थोड़ा बहुत श्रवण करेंगे। तो सबसे पहला कारण भगवान असुरों का वध करते हैं वो ये है कि वो पृथ्वी का बोझ कम करना चाहते हैं, क्योंकि पाप का बोझ बहुत बढ़ जाता है और उनके अवतार के लिए भी ये एक प्रमुख कारण होता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतीर्ण होता हूं। तो भगवान ने पहले से ही गीता में कह दिया है कि मैं असुरों का वध करने आऊंगा, इधर ये मेरा काम है। क्योंकि असुर कौन होते हैं? जो पाप करते हैं, पापी लोग हैं। तो जब पापी लोगों की संख्या पृथ्वी लोक के ऊपर बढ़ जाती है तो पृथ्वी माता इस बोझ को सहन नहीं कर पाती है। हम जब बोझ की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि कितने किलो का वजन होगा, 10 किलो, 50 किलो, लेकिन 50, 100, 200 किलो के वजन से भी ज्यादा अधिक वो बोझ होता है जो पाप करने से होता है। पापों का बोझ अधिक होता है जो हमारे कंधों पे है, जो हमने इतने जन्मों से पाप किए हैं, और ये बोझ जो है जब बढ़ जाता है तो ये सारे हमारे पापों के वजन जो है, शरीर का वजन तो पृथ्वी माता को सहन करना ही पड़ता है, लेकिन वो तो बहुत कम है, पृथ्वी माता इसको आसानी से सहन कर सकती है। लेकिन हमारे पापों का बोझ ये सहन करना पृथ्वी माता के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आपको याद होगा कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के शुरुआत में, कृष्ण बुक के शुरुआत में ही हम क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास दौड़कर चली जाती है कि मेरी रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि पापी लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है पृथ्वी लोक पर कि वो बोझ मुझसे सहन नहीं किया जाता, तो कुछ न कुछ उपाय ढूंढ निकालिए ताकि मेरे शरीर पे जो बोझ है वो कम हो जाए, मुझे ये राहत दिलाइए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, इसका उपाय ढूंढने के लिए तो हमें विष्णु के पास ही जाना होगा। फिर सारे देवी देवतागण पृथ्वी माता को लेकर ब्रह्मा जी उनके आगे आगे चल के वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं। क्षीर सागर के तट पे खड़े रहकर पुरुष सूक्त प्रार्थना करते हैं और भगवान ब्रह्मा जी को घोषणा करते हैं। उनके हृदय से ही, ब्रह्मा जी के हृदय से उनको वाणी सुनाई पड़ती है, दूसरों देवी देवताओं को नहीं सुनाई पड़ती। और भगवान कहते हैं कि बहुत जल्दी अवतार लूंगा, आप चिंता नहीं करो, और दुष्टों का नाश अवश्य मैं कर लूंगा। तो फिर पृथ्वी माता शांत हो जाती है और चली जाती है। तो इस तरह से पृथ्वी माता के ऊपर जो पापी लोग हैं उनका बोझ कम करना भगवान का एक कार्य होता है। और राजा कुरुशेखर ने भी एक सुंदर श्लोक लिखा है मुकुंदमाला स्तोत्र में, जहां वो कहते हैं कि जयति जयति देवो देवकी नंदनस्सो, जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारण आशो मुकुंद। वो कहते हैं कि जय जय हो, जय जयकार हो किनका? उन कृष्ण का जो कि देवकी के पुत्र हैं और जो देव हैं, जो भगवान हैं, उन भगवान कृष्ण का जय हो जो कि देवकी के पुत्र के रूप में आए हैं इस संसार में। जय हो उस भगवान श्री कृष्ण का जो कि वृष्णि वंश में प्रकट हुए और जो वृष्णि वंश के प्रदीप हैं। जय हो उन कृष्ण भगवान का जिनके शरीर का रंग, दिव्य शरीर का रंग नए नए बरसात के बादल के समान है, मेघ श्यामल, और जिनके शरीर कमल के पुष्प के समान कोमल है, कोमलांगो। और जय हो उन कृष्ण भगवान का, उन मुकुंद का जो पृथ्वी के भार को नाश करते हैं। जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। तो भगवान का गुणगान किया जाता है कि ये पृथ्वी के भार को कम करते हैं। तो कृष्ण भगवान अपने अलग अलग अवतारों में आते हैं ऐसे पृथ्वी माता को राहत देने के लिए। और यहाँ पे जो पुण्यवान लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनको कष्ट होते हैं उनको रक्षा करने के लिए। तो भगवान वैसे देखा जाए तो गोलोक वृंदावन में ही रहते हैं श्री कृष्ण भगवान। और जब भी वो वृंदावन में आते हैं तो असुरों का वध करना वैसे उनका खास कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर कृष्ण का एक ही काम है और वो है ब्रज में लीला करना, गोपियों के साथ में लीला करना, गायों को चराने ले जाना, माता यशोदा को प्रसन्न करना, नंद बाबा की सेवा करना। ये सारे कार्य कृष्ण करते हैं, श्याम सुंदर कृष्ण। और नाना जो भी अवतार है वो भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। रामादि मूर्ति शुक्लान यमेन तिष्ठन, जो अलग अलग राम इत्यादि अवतार हैं वो भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। मूल स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण। एते चांस कलह कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज बताते हैं कि एते च अंश कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब भगवान श्री कृष्ण अलग अलग अवतारों में आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये अलग अलग अवतार जो हैं ये भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, या तो उनके अंशों के अंश हैं जिनको कला कहते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण ये तो स्वयं भगवान है, इसलिए कृष्ण को अवतार ही कहते हैं और बाकी सब अवतार हैं। अवतारों के स्रोत उनको अवतारी कहते हैं। तो कृष्ण श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन वाले गोकुल वृंदावन के कृष्ण कौन है? ये अवतारी हैं। और ये अवतारी कृष्ण सारे अन्य अवतारों के स्रोत होने के नाते उनको ये भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं है। भौतिक संसार का काम संभालने के लिए उन्होंने अपने आप को विष्णु और नारायण के रूप में विस्तारित कर लिया है। तो अगर पृथ्वी का भार कम करना है, दुष्टों का नाश करना है, तो भला श्याम सुंदर कृष्ण क्यों आए? उनको कहां समय है? वो तो बांसुरी बजा रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं, गोपियों के साथ में लीला कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनसे सेवा ले रहे हैं। उनको यह भौतिक संसार में आके संसार संभालने के लिए समय कहां है? इसलिए उन्होंने अपने आप को विष्णु के रूप में विस्तारित कर लिया है। तो भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं, अनगिनत अवतार हैं। और क्योंकि श्याम सुंदर कृष्ण इन सारे अवतारों के स्रोत हैं, इसलिए जब श्याम सुंदर कृष्ण अवतार लेते हैं इस संसार में, तो ये सारे अवतार जो भी हैं ये मिलकर श्याम सुंदर कृष्ण के शरीर में होकर कृष्ण के साथ में ही आते हैं। ये समझने वाली बात है। नरसिंह भगवान, प्रभु रामचंद्र, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, मन्वंतर अवतार, युग अवतार, लीला अवतार, सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो अवतार हैं वो सारे कृष्ण भगवान के अंश बनकर ही उनके संग आते हैं। जब श्याम सुंदर कृष्ण ब्रह्मा जी के दिवस में एक बार आते हैं, अपने धाम को गोलोक वृंदावन को साथ में लेकर आते हैं, तो ये सारे अवतार जो हैं उनके संग आते हैं। और वृंदावन में होते हुए भी ये अवतार उनके दिव्य शरीर में ही रहते हैं, क्योंकि उनके दिव्य शरीर से ही ये सारे अवतार आते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सारे अवतार क्षीरोदकशाय विष्णु से आते हैं जब ये संसार में लीला करने आते हैं तो। लेकिन जब श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण प्रकट होते हैं संसार में, तो क्षीरोदकशाय विष्णु महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु ये भी सारे कृष्ण के शरीर में ही होते हैं। तो असुरों का वध जो करना है वो उनके शरीर में विष्णु जो उनके अंश हैं वो कार्य करते हैं। हालांकि हमें लग रहा है कि कृष्ण ही कर रहे हैं वध, लेकिन कृष्ण के भीतर जो विष्णु अंश हैं वो कार्य संपन्न करते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को असुरों का वध करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी श्याम सुंदर कृष्ण ऐसे लगता है कि श्याम सुंदर कृष्ण ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर से विष्णु रूप उस कार्य को संपन्न कर देते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो हिंसा का कार्य जो होता है, युद्ध का कार्य जो होता है, ये संसार की दृष्टि से रजोगुण का कार्य है, क्योंकि युद्ध करने के लिए, झगड़ा करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता होती है, तमोगुण की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि हमें संसार का अनुभव है तो हम सोचते हैं कि जहां भी झगड़े होंगे, जहां भी युद्ध होंगे, जहां भी खून आएगा, तो वो अवश्य वहां रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव आएगा। तो इस भौतिक धारणा को आगे बढ़ाते हुए जो भगवान के भक्त नहीं है, जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे असुरों का वध करते हैं या वो युद्ध करते हैं तो उनके कार्य भी, उनके ऐसे लीला भी रजगुण और तमगुण के अंश ही होंगे। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में हमेशा दिव्य स्तर में स्थित होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, वो बताते त्रिभीर गुणमयर भावेर, वो कहते तीनों गुणों के परे मैं हूं और मैं कभी भी तीन गुणों के परे नहीं आता, अब नीचे नहीं आता। मोहितम नाभि जानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। मैं हमेशा तीन गुणों के परे रहता हूं और मैं कभी भी इन तीन गुणों के अधीन नहीं होता हूं, लेकिन सारा संसार इन तीन गुणों के अधीन है। तो जो तीन गुणों के अधीन है वो मुझे तीन गुणों के अधीन समझते हैं, लेकिन वास्तव में मैं हमेशा इन तीन गुणों के परे रहता हूं। इसलिए भगवान जब ऐसे असुरों का वध भी करते हैं, ऐसे प्रतीत हो सकता है कि वो रजोगुण में कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान रजोगुण से, तमोगुण से, सत्वगुण से भी हमेशा दूर रहते हैं। तो असुरों के वध करने के कार्य में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार कम कर रहे होते हैं तो तब भी वो दिव्य स्तर में ही होते हैं। तो भगवान के असुरों का वध करने का पहला कारण क्या है? पृथ्वी का बोझ कम करना। पृथ्वी का बोझ क्यों बढ़ गया है? पाप की वजह से। ऐसा नहीं कि सब लोग ने खा पी कर वजन बढ़ा दिया तो इसलिए सब लोग किलोग्राम के हिसाब से ज्यादा वेट वजन हो गया तो बोझ बढ़ गया, ऐसी बात नहीं। पाप का बोझ और भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो दूसरा कारण जिसकी वजह से कि कृष्ण असुरों का वध करते हैं वो ये है कि वो असुरों का उद्धार करना चाहते हैं, असुरों का भला करना चाहते हैं। अभी जब कृष्ण भगवान असुरों का वध करते हैं तो वास्तव में उनको मुक्ति दिला देते हैं, क्योंकि ये भौतिक धारणा जो हमारे अंदर होती है वो भगवान की लीलाओं के प्रति हम लगा देते हैं तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब हम देखते हैं कि हम किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं या हिंसा करते हैं तो कभी उसका भला नहीं होता है, उसका भी बुरा होता है, हमारा भी बुरा होता है। लेकिन जब कृष्ण भगवान आक्रमण करते हैं किसी के ऊपर तो इसमें भला ही होता है उसका, जिस व्यक्ति का वध किया हुआ है उसका भला होता है। ये प्रश्न जो है इससे केवल साधारण व्यक्ति भ्रमित नहीं होते, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति भी भ्रमित हुए थे, या भ्रमित तो नहीं हुए लेकिन उनके मन में जिज्ञासा अवश्य आई, और परीक्षित महाराज भी इस प्रश्न को पूछने लगे। जब परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत में प्रश्न किया कि हम देखते हैं कि जब भी असुरों के बीच में और असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध होता है तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा देवताओं का पक्ष लेकर असुरों का वध करते हैं, ऐसा क्यों? वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के अंश असुर भी हैं, देवता भी हैं, दोनों भगवान के अंश होते हुए ऐसे पक्षपात क्यों करते हैं भगवान? कभी कभी वो देवताओं का वध क्यों नहीं करते? ये तो पक्षपात हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको बताया कि यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को किया था, और इस प्रश्न के उत्तर में कौन से लीला का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने? कोई बता सकते हैं सबसे बड़ी लीला कौन सी है श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला के अलावा? सबसे बड़ी लीला, सबसे लंबी लीला कौन सी है जिसका वर्णन सबसे ज्यादा है श्रीमद् भागवत में? दसवें स्कंद में कृष्ण लीला के अलावा कौन सी सबसे बड़ी लीला है? प्रहलाद की लीला, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की लीला। तो इस प्रकार से भगवान फिर सुखदेव गोस्वामी ने ये लीला सुनाई और समझाया कि किस प्रकार से भगवान जब असुरों का वध कर लेते हैं तो उनका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान हमेशा दिव्य अवस्था में रहते हैं, तो जहां भी वो स्पर्श करते हैं तो जिस व्यक्ति को जिस वस्तु को वो स्पर्श करते हैं वो भी दिव्य हो जाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण असुरों का वध करते हैं तो असुर भी उस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। बताया जाता है कि जो असुर भगवान श्री कृष्ण के हाथ मारे गए उनको सायुज मुक्ति प्राप्त हो गई, दिव्य स्थिति प्राप्त हो गई। भले वो भगवान के संग लीला करने का उनको मौका नहीं मिला, लेकिन भौतिक संसार से तो परे हो गए, जन्म मृत्यु के चक्कर से तो मुक्त हो गए। शिशुपाल, शाल्व ऐसे बड़े बड़े असुरों का वध करने के बाद में वो सायुज मुक्ति की प्राप्त हो गई उनकी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब भी असुरों का वध करते हैं तो उनका भला सोचकर ही करते हैं और किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान बताते हैं गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं ना कोई मुझे बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि कृष्ण जब असुरों का वध करते हैं देवताओं की हत्या नहीं करते, तो ये पक्षपात की बात नहीं है, वो असुरों का उद्धार करना चाहते हैं इसलिए करते हैं। तो ये पक्षपात का आरोप इतना ज्यादा फैला हुआ है कि कुंती महारानी भी इसी प्रार्थना करती है और वो कहते हैं कि नवी नहीं वेद कश्चित भगवश्चिकीर्षितम तवे हमानस्य नृणाम विडम्बनम नयस्य कश्चित दैतोस्ति कर्हिचित यस्मिन देशस्य यस्मिन निषमा मतिर नृणाम। वो कहती है कि हे कृष्ण, आपके जो लीलाएं होते हैं वो बड़े अद्भुत होते हैं, विडम्बनम इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और बड़े आश्चर्यचकित है आपके लीलाएं। न वेद कश्चित भगवंश चिकीर्षितम, न वेद कोई इन लीलाओं को समझ नहीं सकता। तव इह मानस्य, कि इन लीलाओं को साधारण मनुष्य की लीला लोग समझते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कृष्ण साधारण मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं। तव इह मानस्य निणाम विडम्बनम, इसलिए लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, सोचते हैं कि ये साधारण व्यक्ति की तरह लीला कर रहे हैं इसलिए ये भी हम जैसे ही हैं। तव इह मानस्य निणाम, निणाम मतलब मनुष्य। लेकिन कुंती महारानी कहती है न यस्य कश्चित द्वेष्यः न दयितः, न आप किसी से द्वेष करते हैं न आप किसी से अधिक प्रेम करते हैं, सबके साथ एक समान आप प्रेम करते हैं, इसीलिए विषमा मतिर निणाम। ये जो पक्षपात की बात है विषमा, ये मतिर निणाम ये साधारण जन साधारण का मत है, लेकिन ये सत्य नहीं है। आप असुरों को ही इतना ही प्रेम करते हैं, प्रेम सभी से करते हैं, क्योंकि सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। जैसे पिता है माता पिता है वो दुष्ट पुत्र से भी प्रेम करते हैं और आज्ञाकारी पुत्र से भी प्रेम करते हैं, दोनों से प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण असुरों को और भक्तों को, दोनों को प्रेम करते हैं, तो पक्षपात का प्रश्न नहीं आता। तो दूसरा कारण क्या है कि भगवान श्री कृष्ण असुरों का वध करते हैं? उनका उद्धार करने के लिए, उनका भला करने के लिए। इस संसार में भी हम देखते हैं कि माता पिता एक दुष्ट बच्चे को कभी थप्पड़ मारते हैं, कभी डांटते हैं, क्यों? उसकी भलाई के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि माता पिता के हृदय में द्वेष भावना है बच्चे के प्रति। उसी प्रकार से राजा का कर्तव्य होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गुनहगार है, जैसे मान लीजिए उसने खून किया हुआ है, तो उसको दंड देना राजा का कर्तव्य बनता है। और खूनी को कौन सा दंड मिलना चाहिए? मृत्यु दंड। लेकिन आजकल मृत्यु दंड के खिलाफ बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन मृत्यु दंड वास्तव में उस खूनी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक क्षण में वो खून के पाप से मुक्त हो सकता है और अच्छी गति की प्राप्ति कर सकता है अगले जन्म में। लेकिन अगर उसे दंड नहीं मिला तो इस जन्म में भी उसे उस घोर पाप का फल भुगतना पड़ेगा, और इस मृत्यु के बाद भी उसे नरक लोक में जाके वहां बहुत दुख पीड़ा सहन करना होगा। तो जब राजा या सरकार उसको मृत्यु दंड देती है तो वास्तव में उसका भला करती है। लेकिन जिनको ये ज्ञान की दृष्टि नहीं है, वो सोचते हैं कि ये बेचारा, उसको हम उसकी हत्या करेंगे तो ये ठीक नहीं है। लेकिन ज्ञान के चक्षु से देखा जाए तो वास्तव में उसके उद्धार के लिए ही किया जाता है। तो अगर वह एक साधारण राजा या साधारण सरकार भी अगर हिंसा करके किसी गुनहगार का उद्धार करते हैं, तो भगवान के लिए और असुर के लिए ये बात कितना और अधिक होना चाहिए। सोचिए, साधारण राजा तो आध्यात्मिक नहीं भी होते, फिर भी उस गुनहगार का, उस खूनी का उद्धार होता है। तो भगवान जब ऐसे कोई गुनहगार का उद्धार करेंगे तो सोचिए कितना भला करेंगे उसका। तो ये रहा दूसरा कारण कि भगवान श्री कृष्ण असुरों का वध करते हैं। तीसरा कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण इन असुरों की इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। भगवान का कार्य यही होता है कि अनादिकाल से वो जीवात्माओं की इच्छा की पूर्ति करते जा रहे हैं, चाहे वो असुर हो चाहे वो भक्त हो। क्योंकि जो जीव होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अंश होते हैं, इसलिए अंश की इच्छा की पूरी करना पूर्ण का कर्तव्य होता है। जैसे बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं माता पिता, स्वाभाविक है। बच्चा कहता मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, माता पिता दे देते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अपने अंशों की इच्छा पूरी करते आए हैं और भविष्य में भी पूरी करते रहेंगे। लेकिन इच्छा कैसी है वैसे वो उनके प्रति व्यवहार करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। कि जो जैसे मेरे संग व्यवहार करना चाहता है, मेरे प्रति संबंध रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है, उसी प्रकार मैं उससे संबंध रखता हूं, मैं उससे व्यवहार करता हूं। ये भी स्वाभाविक है, हमारा व्यवहार भी ऐसे ही होता है। हम देखते हैं कि कोई हमारे प्रति अगर प्रेम का बर्ताव करता है तो हमारे मन में भी इच्छा होती है कि हम भी उसके साथ में ऐसा ही व्यवहार करें। अगर कोई हमारे संग द्वेष की भावना रख के व्यवहार करता है तो हमारे मन में भी द्वेष की भावना आ जाती है और उसके प्रति भी हमारा व्यवहार वैसे ही हो जाता है। लेकिन फर्क इतना है हम में और भगवान में कि जब हमारे प्रति कोई द्वेष भावना करता है तो हमारे हृदय में भी द्वेष भावना आ जाती है उसके प्रति, और हम द्वेष भावना से व्यवहार करते हैं। लेकिन भगवान भले ही बाहरी दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो कि द्वेष भावना से कार्य कर रहे हैं उसके प्रति, लेकिन उनके हृदय में कभी भी द्वेष भावना नहीं होती है। प्रेम भावना रख के ही वो व्यवहार करते हैं। हालांकि बाहरी दृष्टि से ये प्रतीत होता है कि उनके हृदय में द्वेष भावना है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान तब भी उस द्वेषी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, लेकिन क्योंकि वो द्वेषी व्यक्ति ऐसे चाहता है, एक ऐसा संबंध चाहता है भगवान के प्रति जो द्वेष से पूर्ण हो, तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यवहार करते हैं उसके संग में। तो यह है भगवान की खूबी, ऐसे बर्ताव करते हुए भी भगवान अपने हृदय में प्रेम को कणिक तनिक भी कम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के का विरोध करना चाहता है, भगवान से द्वेष करना चाहता है, जैसे हिरण्यकश्यप करते थे, रावण करते थे, भगवान से घृणा करते थे, द्वेष करते थे, एक अग्नि के समान उनके हृदय में ये द्वेष भावना जलती रहती थी, तो भगवान ने सोचा ठीक है, इनको अगर द्वेष का मुख दिखलाना है, क्रोध का मुख दिखलाना है मेरी ओर, और वो चाहते हैं कि मैं भी यही मुख दिखाऊं, तो ठीक है मैं दिखा देता हूं द्वेष का मुख, क्रोध का मुख। तो इस प्रकार से भगवान ने भी उन्हीं के साथ में ऐसा व्यवहार किया जैसे वो चाहते थे। तो वध करना भी एक द्वेष का ही बाहरी रूप से एक द्वेष का प्राकट्य है, द्वेष भावना का प्राकट्य है। किसके द्वेष भावना का प्राकट्य है? भगवान का नहीं, असुरों का। असुरों के द्वेष भावना का प्राकट्य है भगवान का ऐसा व्यवहार करना और उनका वध करना। तो यह है तीसरा कारण। तो तीसरा कारण क्या है भगवान कि भगवान असुरों का वध करते हैं? उनकी किनकी? असुरों की इच्छा की पूर्ति के लिए। यह तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण यह है उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए। एक तो कारण है कि वो असुरों की इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, चौथा कारण है खुद उन्हीं की इच्छा के लिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। देखिए हमारे सबके अंदर झगड़ने की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल है ना, खास करके हमारे भक्तों में। नहीं, भक्तों में तो बहुत बहुत कम है। बाहर हम देखते हैं रास्ते में, जब भी हम जाते हैं कोई ना कोई दो व्यक्ति झगड़े करने वाले मिलते ही हैं, कहीं ना कहीं तू मैं चलता ही रहता है। खास करके हमने देखा बेलगाम में लोग बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं। तो ये झगड़ा करने की प्रवृत्ति जो है वो हमारे अंदर कैसे आ सकती है? क्या अंश के अंदर वो प्रवृत्ति या गुण आ सकते हैं जो कि पूर्ण में नहीं है? ऐसा संभव है? नहीं। तो हमारे अंदर कोई अगर झगड़ा करने की, युद्ध करने की प्रवृत्ति है तो कहां से आई है? आसमान से टपक के तो नहीं पड़ी हमारे अंदर। कहां से आई वो प्रवृत्ति? वो भगवान जो पूर्ण है उनके अंदर है ये प्रवृत्ति, इसलिए तो हमारे अंदर आई। अंतर बहुत है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के अंदर प्रवृत्ति है इसलिए हमारे अंदर आई, तो ये प्रवृत्ति ठीक है तो हम झगड़ा करेंगे, जी भर के झगड़ा करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ये सारे प्रवृत्तियां भगवान के अंदर है, वो प्रवृत्तियां उनके अंदर पूर्ण है, और उन प्रवृत्तियों के अनुसार जब भगवान कार्य करते हैं तो वो कार्य भी परिपूर्ण होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो परिपूर्ण नहीं होते हैं। तो जैसे क्रोध करना भी हमारे अंदर है, कैसे आ गई ये प्रवृत्ति? क्योंकि भगवान के अंदर है, भगवान पूर्ण है, सारे गुणों के वृत्तियों के सागर है वो, और हम उस सागर के बूंद के समान हैं, इसलिए हमारे अंदर भी कण मात्रा में ये प्रवृत्तियां आ जाती हैं। तो भगवान भी कभी कभी लड़ाई करने के इच्छुक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वीर रस का मुझे भी आस्वादन करना चाहिए। जैसे अगर हमेशा मीठी 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 बातें बोले तो फिर बोर हो जाते हैं, उब जाते हैं, कभी कुछ कड़क बोलना कभी कुछ, तो उसमें थोड़ा मसाला आ जाता है जीवन में। लोग लगते हैं क्या बार बार वैसे वैसी बातें, कभी गुस्से होकर कुछ बोलना है, कभी उब के कुछ बोलना है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला के बीच में भी यही होता है, केवल ऐसा नहीं कि दो प्रेमी प्रेमिका की तरह मीठे मीठे बातें बोलते रहे, कभी कभी राधा रानी गुस्से हो जाती उब जाती है और फिर कृष्ण भगवान को उनको मनाना पड़ता है, कभी कृष्ण भगवान गुस्से हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रस के मिठास को बढ़ाता है, ये जो उपरस कहते हैं, ये वीर रस इत्यादि, ये जो मुख्य रस होते हैं, इसके मिठास को बढ़ाते हैं। इसमें कोई विकार नहीं है। विकार कहां है? विकार तब आता है जब इसका प्रतिबिंब हमारे अंदर हम भौतिक संसार में प्रकट करने का प्रयास करते हैं। ये हम गुस्सा हो जाते हैं, हम झगड़ा करते हैं, तो ये एक विकार है। इसमें कोई रस नहीं आता, इसमें कड़वापन आता है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये प्रवृत्तियां आती हैं और उनको प्रकट करते हैं तो रस का मिठास बढ़ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब सोचते हैं कि मुझे युद्ध करना है तो कहां करेंगे? उनके धाम में तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके धाम में तो सब कुछ दिव्य है, वहां सब उनसे प्रेम करते हैं, कोई द्वेष नहीं करते उनसे, तो झगड़ा कहां करेंगे? राधा रानी के साथ में तो झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन तलवार से तो नहीं कर सकते, मुक्का प्रहार तो नहीं कर सकते। तो क्या करना है? उनको भौतिक संसार में आना पड़ता है। तो भौतिक संसार में आकर यहां ऐसे वीरस का आस्वादन करते हैं, जी भर के झगड़ा करते हैं, असुरों का वध करते हैं। इतना करते हैं कि वृंदावन में हम देखते हैं कि हर रोज भोजन के पहले, 12 बजे के पहले, 2-3 असुरों को चटपटाए से खा जाते थे, उनको खत्म कर देते थे। फिर खाने के लिए, भोजन लेने के लिए उनका पेट अच्छा तरह से उनका एपिटाइट हो जाता था। तो भौतिक संसार में ये कार्य भगवान अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं, जो कि वो भगवान उनके धाम में नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो भौतिक संसार भी भगवान के धाम का ही तो हिस्सा है। जैसे जेल भी तो शहर का ही हिस्सा है, भले जेल के अंदर अलग नियम हो शहर के हिसाब से, लेकिन फिर भी जेल तो शहर के अंदर ही है ना। ठीक उसी प्रकार से भौतिक संसार में भले अलग नियम क्यों ना हो, वहां पे कैदी क्यों ना हो, जो भगवान की विरोध कार्य करना चाहता है ऐसे लोग क्यों ना हो, लेकिन ये भी तो भगवान के धाम का ही तो अंश है। लेकिन केवल इतना है कि इसमें आवरण है, जिसकी वजह से इस धाम के अंदर जो लोग हैं, इस भौतिक संसार के अंदर जो है, वो बाहर नहीं देख पाते हैं। जैसे जेल के लंबे लंबे दीवारें होती हैं और अंदर रहने वाले लोग देख नहीं सकते बाहर क्या चल रहा है। कभी कभी बाहर के लोग अंदर आ सकते हैं देखने के लिए, लेकिन अंदर के लोग बाहर नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं ऐसे रस का आस्वादन करने के लिए। और कभी कभी जब इनको कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो फिर क्या करना पड़ता है? अपने भक्तों में से ही कोई व्यक्ति चुनकर उनको बताना पड़ता है कि जाओ मेरी सेवा करो और असुर बनो, और जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ युद्ध करना। क्योंकि भगवान के साथ युद्ध करना मतलब कोई छोटा मोटा असुर तो नहीं कर सकता, कोई शत्रु नहीं कर सकता। कोई शत्रु होना है तो कोई बड़ा असुर होना चाहिए, ऐसा ऐसे शत्रु जो कि इस काबिल हो, इस लायक हो कि भगवान के साथ में युद्ध करे, उनका सामना करे। कुश्ती के अखाड़े में जो बड़े बड़े पहलवान हैं, अभी हम जैसा उसमें चले जाए तो फिर कुश्ती वाले का पहलवान कहेगा अरे ये क्या हो गया, यहां क्या कुश्ती करने से फायदा है। लेकिन कोई बड़ा पहलवान उनके तरह ही कोई जाए तो अब कोई युद्ध में, कोई कुश्ती में कोई मजा होगा, तब कोई बात होगी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कभी कभी भौतिक संसार में ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया तो ठीक है, आके युद्ध करते हैं। और जब नहीं हुआ तो कहते अपने भक्त को चलो भाई तुम भी जाओ भी नीचे, जैसे जय विजय की लीला उन्होंने की, उनकी योजना की उन्होंने, तो इस प्रकार से योजना की कि जय विजय भी भूल गए कि हम भक्त थे। पूरी तरह से वो यही सोच रहे थे कि हम भगवान के शत्रु हैं, भगवान हमारा शत्रु है, और भगवान विष्णु का वध करना चाहिए। वध मतलब वो अपने दृष्टि से सोच रहे हैं कि भगवान दुष्ट है, हम सही है। तो ऐसी भावना अगर उनके अंदर नहीं होती तो कैसे युद्ध करते, भगवान का विरोध कैसे करते? और ये सारे असुर जो हुए उनके अंदर भयंकर शक्ति हुआ करती थी, शक्ति के बिना तो वो भगवान का सामना नहीं कर सकते। लेकिन जितना भी शक्ति क्यों न हो, भगवान के सामने ये शक्ति क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे छोटा सा बालक है, वो अपने पिता के साथ कुश्ती करता है, पिता सोचता है चलो बच्चे के साथ में खेलेंगे, बच्चे को लेकर 2 साल का बच्चा है, वो कुश्ती करते रहता है, कभी बच्चा उसके ऊपर, कभी वो बच्चे के ऊपर, कभी ऐसे लगता है, बच्चे को लगता है कि वास्तव में पिता कुश्ती कर रहा है मेरे साथ में, और उसको बड़ा आनंद आता है, सोचता है कि कभी कभी मैं जीत रहा हूं, कभी कभी पिता हार जाते हैं, कभी पिता जीत जाते हैं। लेकिन कोई बाहर से जो देख रहा व्यक्ति, वो तो समझ जाता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि बच्चा कितना भी शक्तिशाली हो, पिता से वो कभी हरा नहीं सकता, पिता की शक्ति कहां और बच्चे की शक्ति कहां। लेकिन फिर भी पिता को भी आनंद आता है इसमें। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे वीर रस का आस्वादन करते हैं, तो उनके शक्ति का एक कण मात्र अंश भी वो अगर प्रकट करते हैं तो असुरों को ऐसे वध कर सकते हैं। उनके लिए कोई कठिन बात नहीं है, बड़ी बात नहीं होती। यहां तक आचार्य बताते हैं कि असुरों का वध करना उनके लिए एक पिकनिक जैसा है। पिकनिक में जाके आराम करते हैं, बस किसी को वध कर दिया, यहां कुछ वध कर दिया। तो बार बार जो है कृष्ण भगवान या उनके अवतार में वो उकसाते हैं, उनको ललकारते हैं युद्ध में, ताकि वो ज्यादा आगे आक्रमण करे, ज्यादा क्रोध से आक्रमण करे, ताकि कुछ झगड़े में युद्ध में कुछ मजा आए, कुछ चटपटा स्वाद भी आए। तो इस प्रकार से अपने दिव्य आनंद की वृद्धि के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ऐसे असुरों के संग युद्ध करते हैं। तो चौथा कारण क्या है कि भगवान असुरों का वध करते हैं? अपने दिव्य आनंद के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, वीर रस का आस्वादन करने के लिए। तो पांचवा कारण जिसकी वजह से भगवान असुरों का वध करते हैं, वो है अपने भक्तों की रक्षा करना, परित्राणाय साधुनाम। तो भगवान विनाश, दुष्टों का नाश करने के लिए तो आते ही हैं, लेकिन भक्तों की रक्षा करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। जब भगवान ने नरसिंहदेव का रूप धारण किया, तो क्या वो हिरण्यकश्यप का वध करने आए थे कि प्रहलाद को बचाने आए थे? क्या लगता है आपको? प्रहलाद को बचाने आए थे। और क्योंकि प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप का वध करना पड़ा, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वैसे देखा जाए तो असुरों का वध करना ये भगवान की शक्तियां भी कर सकती हैं, लेकिन जहां तक अपने भक्तों को बचाने का सवाल होता है, वो खुद आकर करना चाहते हैं। हालांकि ये भी वो अपने दूत के द्वारा करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके अंदर शक्ति नहीं है, दूतों की कमी है, शक्तियों की कमी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद करना चाहते हैं। ऐसे क्यों? ये प्रश्न भी आता है मन में, और बादशाह अकबर के मन में भी यही प्रश्न आया था। तो अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, अरे तुम्हारे धर्म में हमने देखा है कि भगवान खुद आते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए, क्या वो कैसे भगवान है कि उनको खुद आना पड़ता है, वहां बैठे बैठे बचा नहीं सकते अपने भक्तों को? तो बीरबल ने कहा, आपको सही समय पर बताऊंगा, समझाऊंगा। तो एक बार ऐसा हुआ बहुत दिन पहले कि बादशाह अकबर अपने पोते को लेकर वो नदी में ऐसे ही सैर करने गए, नौके के ऊपर बैठे थे, वहां बीरबल भी थे, अकबर थे, और उनका छोटा सा पोता था, बच्चा, और खेल खेल में बच्चा अचानक नौके से गिरकर पानी में गिर पड़ा। और जब पानी में गिर पड़ा तो तुरंत हिंदुस्तान के बादशाह अकबर ने क्या किया, इतने सारे सैनिक पड़े थे वहां, लेकिन जब तक सैनिकों को पता चला कि बिजली के समान अकबर अंदर कूद पड़े पानी में और बच्चे को उठा लिया, और कहने लगा शुक्र है भगवान का, शुक्र है कि बच्चा बच गया। तो फिर बादशाह को, अकबर को बीरबल ने कहा, आपको याद है कि आपने पहले क्या प्रश्न किया था मुझसे हमारे भगवान के बारे में, कि भगवान क्यों खुद आते हैं बचाने के लिए? आपको जवाब मिला कि नहीं? अकबर ने कहा, कैसे जवाब? ने मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। कि देखो आपके इतने सारे सिपाही यहां थे, वो कूद पड़ते पानी में, कूदे भी तो आप क्यों कूद पड़े अंदर? आप तो बादशाह है, एक छोटे बच्चे के को बचाने के लिए आपको कूदना पड़ता है, सारे देश के राजा को? तो क्यों कूदे आप? क्योंकि आपका लगाव उसके साथ था, आपकी आसक्ति थी, प्रेम था, विशेष प्रेम है, इसलिए आप खुद कूद पड़े। आपने ये नहीं कहा कि सैनिक कूद पड़ो, सैनिक को कहते तो कूद देते, बचा भी देते उसको, लेकिन क्योंकि प्रेम था आप चाहते थे कि खुद जाकर बचाएं, क्योंकि ये काम आप खुद करना चाहते थे। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान अगर चाहे तो अपने भक्तों की रक्षा अनेक तरह से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं तो उनको बचाने के लिए भगवान खुद आते हैं। इसलिए वो कहते हैं परित्राणाय साधु नाम। तो ऐसे प्रहलाद को उन्होंने बचाया और हर लीला में अपने भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं आके करते हैं। और वृंदावन में भी हम देखते हैं कि हमेशा ब्रजवासियों की रक्षा करते रहे और असुरों का वध करते रहे। तो ये रहा पांचवा कारण। छठा कारण कि भगवान असुरों का वध करते हैं वो ये है कि असुरों के वध करने से वो भक्तों को आनंद देना चाहते हैं, भक्तों को भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। जब कोई दुष्ट लोग भगवान के हाथ मारे जाते हैं तो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। ये असुरों के वध से प्रसन्न होने की प्रवृत्ति, इसका विकार, इसका विकृत रूप हम देखते हैं जो टीवी और सिनेमा देखते हैं। जब हीरो विलन के साथ में डिशुम डिशुम करता रहता है तो सारे जो बैठ रहे लोग देख रहे होते हैं, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चिंता में रह जाते हैं कि अरे अभी ये विलन जो है अभी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है। हालांकि वो जानते हैं ये सब ढोंग है, फिर भी इससे इतने प्रभावित हो जाते हैं। और जैसे जैसे हीरो उनको ज्यादा पीटता है वैसे खुश हो जाते हैं, और मारो और मारो, कभी कभी जोर से बोलने भी लगते हैं, इतने इससे इसमें मग्न हो जाते हैं। और जब हीरो विलन को मार देता है तो तालियां बजती है, वाहवाकार हो जाते हैं। तो ये कैसा है, ये इसका विकृत रूप है। केवल वो प्रवृत्ति हमारे अंदर है कि भगवान की दुष्टों को नाश करे, तो भगवान की जगह में हमने इन हीरो को ही अपना भगवान बना दिया। इसलिए फिल्मी हीरो के पीछे लोग पागल जैसे दौड़े पड़े रहते हैं, हमें हमारे उनका ऑटोग्राफ मिले, उनके संग में पिक्चर खींचे, लोग पागल हो गए। क्यों? भगवान को नहीं जानते, तो ऐसे साधारण लोगों को अपना भगवान बना दिया, पूजनीय बना दिया, उनके पिक्चर रखेंगे। बड़े बड़े पिक्चर हमें देखा है कितनी बार, फिल्मी सितारों के सितारे क्यों कहते हैं पता नहीं है, लेकिन फिल्मी सितारे इतने बड़े बड़े पिक्चर उनके लगाएंगे कमरे में, उनको ही भगवान रखा है, बना रखा है। इसके बजाय कि भगवान की तस्वीरें बनाए, अच्छे अच्छे मूर्ति भगवान की तस्वीर लगाए, ऐसे लोगों के लगाते। तो ये प्रवृत्ति जो है ये हमारे अंदर है, जब दुष्टों का नाश होता है तो हमें प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान भी असुरों का वध करते हैं तो देवता लोक से ऊपर लोक से भी सारे गंधर्व देवी देवता भी वाहवाकार करते थे, जय हो कृष्ण का, जय हो भगवान। असुरों का वध करते थे उस समय भी ग्वाल सारे ब्रजवासी वाहवाकार करते थे, वाह वाह कृष्ण, वाह वाह कितनी सुंदर लीला की, बहुत अच्छा कार्य किया तुमने, तो भक्त प्रसन्न हो जाते थे। देखिए भगवान और भक्त के बीच में ये एक बहुत ही अनोखा एक संबंध होता है, जिसमें जो भी भगवान के भक्त कार्य करते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और जो भी कार्य भगवान करते हैं केवल अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ये है सुंदर आदान प्रदान भक्त और भगवान के बीच में। तो भगवान जब असुरों का वध करते हैं वो चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों को प्रसन्न करूं, भक्त खुश हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो जब वो देखते हैं कि ग्वाल बाल भी ताली मारकर ऊपर नीचे कूद रहे, वाह कृष्ण वाह वाह वाह, बहुत अच्छा इसका वध किया तुमने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो कृष्ण भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये भी स्वाभाविक है, हमारे मित्र भी हमारा वाहवाकार करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, अरे वाह बहुत बढ़िया कीर्तन किया तुमने, अरे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से कृष्ण चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझे अप्रिशिएट करें, मेरा गुणगान करें, वो प्रसन्न हो। ये प्रवृत्ति हमारे अंदर है, कैसे है, भगवान के अंदर। तो ये छठा कारण है। क्या छठा कारण है? भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। और सातवां कारण, सातवां कारण ये है कि भगवान असुरों को अपने लीलाओं में शामिल इसलिए करते हैं कि जब असुर होते हैं बहुत भयंकर होते हैं और आकर सबको कष्ट देते हैं, खास करके उनको भक्तों को कष्ट देते हैं और भक्तों को बड़ी गहरी चिंता में डाल देते हैं, उनके खुद के जीवन के बारे में और कृष्ण के जीवन के बारे में। तो असुर आकर हमेशा भक्तों को चिंता में डालते हैं और ऐसे चिंता में रहते हुए भक्तों का प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ जाता है। जैसे जब असुर आकर कृष्ण के पर आक्रमण करते थे तो ब्रजवासी इतने चिंतित हो जाते थे कि वो प्राय प्राण को ही त्याग देते थे। जब कालिया ने भगवान श्री कृष्ण को 2 घंटे पकड़ रखा था तो प्राय सारे ब्रजवासी बेहोश हो गए चिंता से, चिंता के मारे। तो ऐसे चिंता से उनका जो उनकी लालसा जो है कृष्ण के लिए वो बढ़ती है और उनका जो आकर्षण है कृष्ण के प्रति, उसकी वजह से जो भी कल्मश हृदय में रह जाते हैं, भौतिक कल्मश, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे तीव्र चिंता के अग्नि में ये कण मात्र जो भी अभी अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं। वैसे देखिए, हम कहते हैं कि हम इस जगह को वृंदावन बनाना चाहते हैं, मतलब इस जगह को आनंद से पूर्ण बनाना चाहते हैं, लेकिन ये आनंद से पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि से है, भौतिक दृष्टि से नहीं। अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वृंदावन में चिंता ही चिंता थी, कष्ट ही कष्ट। जैसे हमने पहले बताया कि हर रोज भोजन, दोपहर के भोजन के पहले 2-3 असुर तो आया ही करते थे, रूटीन हुआ करता था। तो सोचे ब्रजवासियों की क्या दशा हुई होगी, हर रोज कोई ना कोई असुर, हर रोज हर क्षण ब्रजवासी चिंतित रहते थे कि कृष्ण कोई कुछ होगा तो नहीं, आज कौन सा असुर आएगा, आज कंस कौन से अत्याचार करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से ब्रजवासी हमेशा चिंता में रहते थे, यहां तक कि जब तृणावर्त का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो सारे बुजुर्ग गोपों ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब हमें गोकुल महावन से निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां कृष्ण के को कबूरा करने के लिए कंस कितने सारे असुर भेज रहे हैं, तो यहां कृष्ण सुरक्षित नहीं है, हमें वृंदावन जाना चाहिए गोकुल से। तो फिर गोकुल से सारे ब्रजवासी जो है वृंदावन चले गए क्षतिकर के पास में। तो इस तरह से वहां ब्रजवासी हमेशा चिंता में रहते थे, लेकिन क्योंकि ये चिंता कृष्ण के प्रति थी और क्योंकि ये पहले से भी इतने शुद्ध भक्त है, इसलिए इस चिंता में भी उनको आनंद था, दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी। तो ये चिंता दिव्य चिंता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बताया करते थे कि लोग सोचते हैं कि भक्ति में आने के बाद सब शांत होना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि चिंता बढ़ जाती है भक्ति में आने के बाद में। क्यों? क्योंकि भक्त लोग प्रचार के बारे में चिंता करने लगते हैं, दूसरे भक्तों के बारे में चिंता करने लगते हैं, अरे इसकी भक्ति में ऐसी समस्या आ गई, भक्ति छोड़ने का नौबत आ गई इसकी, अरे कैसे इसको बचाया जाए भक्ति मार्ग से, कैसे दूसरे लोगों को भक्त बनाया जाए, मंदिर के प्रति ये कष्ट आ गया है, मंदिर के लिए वो कष्ट आ गया है, तो कैसे आगे इसको ठीक किया जाए। तो भक्तों के हृदय में हमेशा चिंता रहती थी। तो प्रभुपाद कहते थे कि ये चिंता साधारण चिंता, भौतिक चिंता नहीं है, ये दिव्य चिंता है। ऐसे दिव्य चिंताओं से हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है भक्तों के हृदय में। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति में आने के बाद भक्ति से संबंधित या प्रचार से संबंधित जो भी चिंताएं हैं वो साधारण है, ऐसे नहीं समझना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से वृंदावन में जो जिस चिंता का अनुभव कर रहे थे ब्रजवासीगण असुरों की वजह से, वो दिव्य चिंता थी। और ऐसे दिव्य चिंता से वास्तव में कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और तीव्र बनते जाता था। जैसे माता पिता जब बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, बच्चा कहां सड़क पे चला गया, कहां गया कहां गया, ढूंढते रहते हैं कृष्ण को, अपने बच्चे को, और जब बच्चा मिल जाता है तो कितना प्रेम उनका बढ़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ब्रजवासी गण भी चिंता में रहते थे, कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण। और असुरों के हाथों से जब बच जाते थे कृष्ण और असुर का वध कर देते थे, तो सारे ब्रजवासी सोचते थे वाह कितना अच्छा हुआ, और कृष्ण का आलिंगन कर लेते थे, कृष्ण का गुणगान करते थे, भगवान को प्रार्थना करते थे, देवताओं को प्रार्थना करते थे, धन्यवाद अर्पण करते थे कि शुक्रिया, आपको बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे बच्चे कृष्ण को बचा दिया है। इस प्रकार से उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ता जाता था। तो ये और एक कारण है कि कृष्ण भगवान असुरों की लीला, असुरों के वध की लीला करते थे। क्या है सातवां कारण? उनके ब्रजवासियों के, उनके भक्तों के लालसा और प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान ने असुरों को अपने लीला में शामिल कराया। और आखिरी कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जो आठ कारण सूझे हम वो बता रहे हैं। तो आठवां कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि ऐसे लीलाओं से उनके हृदय में कलमश नष्ट होकर उनके वास्तव में जो दिव्य रस का आस्वादन है, जो गोलोक वृंदावन के रस का आस्वादन है, उसका स्वाद जल्दी से हो। इसके लिए थोड़ा कुछ समझाने की आवश्यकता है। देखिए भगवान के दो प्रकार के लीलाएं होती हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने चैतन्य शिक्षामृत में समझाते हैं। एक को कहते हैं नित्य लीला, दूसरे को कहते हैं नैमित्तिक लीला। नित्य लीला मतलब वो लीला जो केवल गोलोक वृंदावन में भगवान के धाम में होते हैं बस, और ये लीला इनको अष्टकालीय लीला कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के 24 घंटे में, वहां भी भगवान के 24 घंटे होते हैं, तो इन 24 घंटे का 8 भागों में विभाजन किया जाता है, तीन तीन घंटे का, और हर तीन घंटे के एक भाग में अलग अलग प्रकार की लीलाएं होती रहती हैं, और ये लीलाएं हर दिन होती रहती हैं, अनादिकाल से चलती आ रही, अनंत काल तक चलते रहेंगे। ये दिव्य लीलाओं का चक्र जो है चलते रहता है, अष्टकालीय लीला कहते हैं इसको। तो ये लीलाएं गोलोक वृंदावन में हमेशा चलती रहती हैं, जैसे कि गायों को चराने ले जाना, गोपियों के संग लीला करना, अपने माता पिता के संग में लीला करना, केवल किशोर अवस्था में। गोलोक वृंदावन में बाल्यावस्था, कुमार अवस्था नहीं होती, पौगंड अवस्था नहीं होती, क्योंकि किशोर अवस्था जो है ये भगवान श्री कृष्ण का नित्य रूप होता है। इसलिए वहां पर गोलोक वृंदावन में केवल ये नित्य लीला चलती है जो कि कृष्ण के किशोर लीला में होती है, अन्य लीलाएं नहीं होती हैं। तो ये नित्य लीला कहलाते हैं अष्टकालीय लीला। और दूसरी लीला ऐसे है जिनको नैमित्तिक लीला कहते हैं, मतलब जो लीला कभी कभी प्रकट किए जाते हैं बीच बीच में, लेकिन कहां पर? वहां गोलोक वृंदावन में नहीं, भौम वृंदावन में। जब भगवान यहां अवतार लेकर आते हैं, यहां प्रकट होते हैं भौतिक संसार में, तो कभी कभी अपने नित्य लीला के साथ साथ ये नैमित्तिक लीला भी प्रकट करते हैं, जैसे असुरों का वध करना। भगवान के धाम में तो असुर लीला, वध का लीला की लीला तो नहीं होती, या तो फिर भगवान का जन्म लेना, भगवान का बड़ा होना, भगवान का वृंदावन छोड़ना, मथुरा जाना, द्वारका जाना, ये तो गोलोक वृंदावन में नहीं होता, ये केवल भौम वृंदावन में होता है। जब यहां भगवान आकर लीला करते हैं ठीक उसी समय होता है। तो इनको नैमित्तिक लीला कहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी समझाते हैं कि ये नैमित्तिक लीला इनका काम क्या है, कि क्योंकि यहाँ के जो साधक भक्त होते हैं, हम सब साधना कर रहे हैं ना, साधक भक्त, हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, उन नित्य लीलाओं के बारे में जो कि गोलोक वृंदावन में चल रहे हैं, उन अष्टकाली लीलाओं के बारे में हमें इतना ज्ञान भी नहीं है और इतना आकर्षण भी नहीं है। उस नित्य लीला के दिव्य रस का पान करने के लिए अभी तक हम पूरी तरह से योग्य नहीं हुए हैं। इसलिए कृष्ण भगवान जब भौम वृंदावन में आते हैं तो उन नित्य लीलाओं के साथ साथ ये नैमित्तिक लीलाओं का प्रदर्शन भी करते हैं, और इन नैमित्तिक लीलाओं का श्रवण करने, कीर्तन करने से, इनका स्मरण चिंतन करने से क्या होता है कि हृदय का शुद्धिकरण होता है, जिससे हम इस योग्य बनते हैं कि नित्य लीलाओं के रस का आस्वादन हम कर पाए। तो ये जो नैमित्तिक लीला है ये साधक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनका चिंतन मनन श्रवण कीर्तन करने से धीरे धीरे हमारा नित्य लीला की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, और इन नैमित्तिक लीलाओं में से प्रमुख एक है असुरों का वध करना। तो इन असुरों के वध की लीला सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो आठवां कारण क्या है? आठवां कारण यह है कि असुरों का वध जो है यह नैमित्तिक लीला है, और ये सारे नैमित्तिक लीलाओं का श्रवण कीर्तन चिंतन मनन करने से नित्य लीला जो गोलोक वृंदावन में हो रही है, वास्तव में जिनमें शामिल होना अंततः हमारे जीवन का उद्देश्य है, उन लीलाओं का जो रस है उसका आस्वादन हमें धीरे 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 से मिल सकता है। तो उन लीलाओं के में शामिल होने के लिए, उन लीलाओं के रस का पान करने के योग्य होने के लिए हम ये भगवानी नैमित्तिक लीला अपने नित्य लीला में मिलाकर यहां भौम वृंदावन में संसार में प्रदर्शित करते हैं। तो ये आठवां कारण हुआ। वास्तव में ये असुर जो है, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, उनके चरित्र का विश्लेषण करके भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि ये हर एक असुर एक एक प्रकार का, ये अलग अलग प्रकार के अनर्थों के प्रतीक हैं, जैसे पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, अलग अलग अनर्थों के प्रतीक हैं, और हमें समझने चाहिए कि ये असुर इस अनर्थ का प्रतीक है, वो असुर इस अनर्थ का प्रतीक है, और ऐसे जानते हुए भक्ति विनोद ठाकुर हमें सलाह देते हैं कि जब भी हम भगवान का नाम लेने के लिए बैठते हैं, हर रोज हमें भगवान की कृपा याचना करनी चाहिए कि ये एक असुर हमारे हृदय में बैठे हैं, पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, और ये असुर बैठे हैं, इनका मतलब जो प्रवृत्तियां हैं, अलग अलग प्रकार की असुरी प्रवृत्तियां हैं जिनके प्रतीक ये सब अलग अलग असुर हैं, इन प्रवृत्तियों को आप कृपा करके नष्ट कर दीजिए। जब निस्सहाय भावना में भगवान से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे से भगवान इन असुरी प्रवृत्तियों को, इन अनर्थों को हमारे हृदय से नष्ट कर देते हैं। तो यह है महत्व इन असुर लीलाओं का। आगे चलकर अगले तीन चार दिनों में हम हरेक असुर के वध की लीला के बारे में सुनेंगे कि लीला में क्या हुआ, भगवान ने क्या किया, और आचार्य क्या कहते हैं इसके बारे में कि ये कौन से अनर्थ का प्रतीक है, और ये असुर अपने पहले जन्म में कौन थे, कैसे आए, कैसे असुर बने, ये सब हम अलग अलग लीलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हुए आठ कारण भगवान श्री कृष्ण के असुरों का वध करने का कारण। ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमें सूझा आज सुबह बैठ के हमने और कल रात को थोड़ा बहुत इन आठ कारणों को बनाया, जहां ग्रंथों में हमारे भागवत इत्यादि ग्रंथों में लिखे हैं, तो इन आठ कारणों को हमें याद रखना चाहिए। और जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये सारे असुर जो हमारे हृदय में हैं उनको नष्ट कर दीजिए, और जिस कारण से आप यहाँ आए हैं, आपने असुरों का वध करना चाहा है, वो आठों कारण भी पूरी तरह से सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज काफी देर हो गया, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण ये बैकग्राउंड की आवश्यकता है। जब हम असुरों के वध की लीला सुनने जाएंगे तो इसके लिए बैकग्राउंड होना बड़ा आवश्यक है। और अलग अलग लीलाओं में आप देखेंगे कि ये आठों पॉइंट एक एक करके कैसे कैसे आते हैं, अलग अलग इन पॉइंट्स की पुष्टि जो होगी वो उस चर्चा में होगी, अलग अलग असुरों की लीला में। तो आपके कोई प्रश्न है?
फिर इसका आस्वादन करना चाहते हैं तभी इसे लायक आदमी अगर भूतल पर नहीं मिलता है तो उनके भक्त को ही भेज देते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु हिरण्यकश्यप जय और विजय के रूप में तीन बार आए, तो तभी जो जय और विजय इधर भूतल पर आए उन्होंने राक्षसों का पाठ भी किया, तभी वो शुद्ध भक्त ही थे, लेकिन भगवान के योग माया से वो ऐसा असुर जैसा लग रहे थे, लेकिन तब उस असुर के योनि में रहते हुए उन्होंने जो भी उनको लोगों को कष्ट दिया, जो भी लोगों को उन्होंने मार दिया, तो उनको भी भगवान की प्राप्ति होगी या शुद्ध भक्त बने या नहीं?
जो लोग उनके साथ में थे
जिन्होंने भी उनको मार दिया, उनको भी उन्होंने कष्ट दिया असुर के योनि में रहते हुए,
जिन व्यक्तियों को असुर ने कष्ट दिया,
हाँ,
क्या उनका
उन लोगों को सदगति हुई कि नहीं?
उन लोगों को सदगति हुई या नहीं? हाँ। अभी वो तो कृष्ण के बीच में और उनके बीच में। वैसे असुरों ने जिन लोगों को कष्ट दिया उसके पीछे भी कोई कारण है, दो कारण हो सकते हैं। एक कारण, एक प्रकार के लोग वो हैं, या एक प्रकार का कष्ट वो लोगों को मिला जो उनके कर्मों के हिसाब से उनको मिलना ही था। ये असुर के माध्यम से आया या कभी कभी और किसी के माध्यम से आया, हमारे पाप कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। वो फल जो है कष्ट के रूप में आएंगे, किसी के भी माध्यम से आ सकते हैं, कभी कभी असुरों के माध्यम से भी आ सकते हैं, कभी कभी भक्तों के माध्यम से भी आ सकते हैं। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, जहां तक श्रुत भक्तों को उन्होंने कष्ट दिया तो वो उनके कर्मों का फल नहीं था भक्तों का, क्योंकि भक्त तो ये कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, तो फिर भक्त के ऊपर ऐसे कष्ट असुरों के द्वारा भगवान क्यों इसको अनुमति देते हैं, ये भी एक अलग विषय है। लेकिन संक्षेप में देखा जाए, पहली बात भक्तों का यश बढ़ाने के लिए, भक्तों का गुणगान करने के लिए कि देखो मेरे भक्त कितने महान हैं, इतने कष्ट में भी मेरी भक्ति को नहीं छोड़ते, कितने ग्रेट हैं, कितने महान हैं मेरे भक्त। दूसरी बात, संसार को और हम जैसे भक्तों को सिखलाने के लिए कि देखो तुम्हें कैसे बनना चाहिए, कष्ट में तुम्हें कैसे भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमें सिखलाने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए, दूसरा कारण। और तीसरा कारण क्या है कि उन भक्तों के हृदय में अगर थोड़ी बहुत कलमश भी क्यों ना हो, उनको अच्छी तरह से साफ सुथरा करके हृदय को बिल्कुल 100% शुद्ध बनाना, अगर 99% भी शुद्ध है लेकिन बाकी जो 1% है वो भी शुद्ध कराकर भगवान कर देते हैं। जैसे किसी कोई शिल्पकार मूर्ति को बनाते हुए ठोकर मार मार कर मूर्ति को सुंदर बनाता है ना, ऐसे नहीं कि प्रेम से हाथ ऐसे करके मूर्ति बन जाती है, बन जाती है मूर्ति कभी ऐसे ठोकर मार मार के तो सुंदर मूर्ति बन जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे हृदय को भी भगवान सुंदर बनाते हैं ठोकर मार मार के, कभी ऐसे हाथ भी देते हैं लेकिन ज्यादा ठोकर देते हैं ताकि धीरे धीरे से अनर्थ निकल जाए और भगवान के प्रति आकर्षण जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। तो जो भक्त नहीं थे उनको अपने कर्मों का फल मिला, और जो भक्त थे उनको उनके लिए ये कारण है जिससे कि जो कष्ट असुर ने उनको दिया, इसको हम इस दृष्टि से समझ सकते हैं। ठीक है,
इसी एक कारण में बोला कि भगवान की इच्छा थी कि वीर रस का आस्वादन करे, लेकिन हम तो बोलते हैं भगवान सच्चिदानंद है, अगर वो सच्चिदानंद है तो पूर्ण है अपने आप में, तो उनको वीर रस की आस्वादन करने की इच्छा भी कैसी हुई?
अगर वीर रस का आस्वादन की इच्छा नहीं होती तो पूर्ण कैसे होते? बोल रहे हैं कि पूर्ण है इसलिए क्यों होता है उनको, लेकिन हमारा प्रश्न उल्टा है, ये अगर पूर्ण है तो नहीं कैसे हो सकता है, सब कुछ होना चाहिए। वीर रस का आस्वादन की इच्छा भी होनी चाहिए, क्रोध का भी होना, सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो पूर्ण कैसे होंगे। और वो अनंत है और वे दिव्य इच्छाएं हैं, आत्माराम अपने आप में संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अलग अलग दिव्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कार्य करते हैं, लेकिन उनके कार्य सफल हो जाते हैं, हमारे कार्य सफल नहीं होते, वो हमें और उनमें अंतर होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न?
त्रेता युग सत्य युग त्रेता युग और द्वापर युग में जो भी असुर हो गए वो अभी हम अभी देखते हैं कि कलि युग में तो शास्त्र के वो धर्म का भी पालन करते थे जो असुर भी है, और आज के हम देखते हैं कि हम धर्म का जो भी जितने भी कलो जो कलयुग में जो भी है वो धर्म का कुछ भी पालन नहीं करते, शुद्ध भी वही टाइम में धर्म का पालन करते थे, लेकिन आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि कौन भी किसी का भी कलोक शुद्र संभव बोलते हैं, तो वो टाइम में उतना ये रहने का पृथ्वी का जो भार है वो इतना ज्यादा नहीं था जो आज चालू है, तो ऐसा क्यों है?
क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में स्वभाव है सभी लोग पापी होते हैं, इसलिए तो भगवान ने एक ऐसे विशेष अवतार लिया है इस कलयुग में। पहले देखिए जब नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप का वध किया, चले गए। प्रभु रामचंद्र आए, थोड़े साल यहां रहे, भले वो हजारों साल क्यों ना हो लेकिन लंबे दृष्टि से देखा जाए तो थोड़े साल रहे, थोड़े असुरों का वध किया, रावण का वध किया, चले गए अपने धाम। कृष्ण भगवान भी खुद आए, 125 साल रहे, थोड़े असुरों का वध किया, चले गए। लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो आए तो उन्होंने हमारा परिचय भगवान के एक ऐसे अवतार से करा दिया जो आए और रहे, चले नहीं गए। कौन है वो अवतार? हरिनाम प्रभु। हरिनाम प्रभु, प्रभु मतलब हमारे प्रभु, हमारे मास्टर। जैसे मंदिरों में जब 10 नाम अपराध बोलते हैं सुबह को, फिर बाद में बोलते हैं हरिनाम प्रभु की जय, ये भी भगवान ही है, भगवान के अवतार है। तो इसलिए कलयुग में भगवान ने ऐसे अवतार लिया है जो आएंगे जाएंगे ऐसे नहीं, आकर रह गए हैं सारे कलयुग के लिए, हमारे साथ में है। तो सारे असुरों का वध करने के लिए भगवान ने अभी ये अवतार लिया है, हरिनाम का अवतार लिया है, ताकि लोगों को हृदय में जो असुर है वो सब खत्म हो जाए। ठीक है,
हरि बोल। जो भगवान के सामने युद्ध करने के लिए जो असुर आए थे वो भगवान की योजना से जो वो भक्ति आए थे, तो उनके प्रति हमें आदर करना चाहिए कि घृणा करना चाहिए?
आपको क्या लगता है? बोलिए, आप ही बोलिए।
दोनों भी करना चाहिए।
दोनों भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बहुत अच्छा जवाब, फिर से बोलो, माइक में बोलो आप। देखो हमारा स्थान कर दिया।
जो भी असुर थे उनके प्रति दोनों भी करना चाहिए, जैसे कि हम घृणा करते हैं तो घृणा करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आसुरी भाव से जो भी लोगों को दुख दिया, भक्तों को कष्ट दिया, उसके प्रति घृणा करनी चाहिए, और आदर इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन्होंने भगवान की इच्छा जो थी कि वो ऐसा काम करे, तो भक्त होते हुए उन्होंने आसुरों को काम किया और भगवान को खुश किया, उसके लिए हमको आदर भी करना चाहिए।
तो हमें हृदय में जानना चाहिए कि ये वास्तव में भगवान की इच्छा के अनुसार ही हुआ है, भगवान की लीला में भी ये शामिल हुए हैं, फिर ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, दुर्योधन भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दुर्योधन के हम पूजा करें घर में फोटो रख के, लेकिन हम जानेंगे कि ये कोई विशेष व्यक्ति है, कि नहीं तो भगवान का सामना कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उस असुरी प्रवृत्ति से हम घृणा करते हैं, व्यक्ति से नहीं।
ये माता ने भगवान श्री रामचंद्र को वनवास में भिजवा दिया तो भी भगवान श्री रामचंद्र कई कई का, क्योंकि वो रामायण पूरा करने के वास्ते कई कई ने उसी तरह से कर दिया, इसी वजह से भगवान रामचंद्र भी पहला उनका आदर करते थे।
क्योंकि कैकेयी माता अगर ऐसे योजना नहीं बनती, षड्यंत्र नहीं रचती तो रामायण कहाँ होता, तो प्रभु रामचंद्र फिर अयोध्या के राजा बन जाते जैसे दशरथ महाराज ने सोचा था, सब कुछ ठीक ठाक चल जाता, आए चले गए भगवान प्रभु रामचंद्र जी, न हनुमान न रावण न कुछ कोई लीला।
और एक ये जैसे ध्रुव महाराज का अभी चल रहा है, तो उनकी जो भी माता थी उन्होंने उनको उनके जो पिता थे उनके गोदी में से उठाया, इसलिए ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हो गई।
अवश्य, इसलिए भक्त जो होता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति बुरी परिस्थिति नहीं है। भौतिक लोग भी इस तत्व को जानते हैं। वो एक कहावत है कि जो भी होता है उसको रुकावट मत समझिए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक मौका समझिए, प्रगति करने के लिए एक मौका समझिए, स्टेपिंग स्टोन। भौतिकवादी लोग भी इस बात को समझते हैं, तो भक्त को कितना ज्यादा समझना चाहिए कि अगर कोई ऐसी घटना हमारे जीवन में होती है जिसको हम प्रतिकूल समझते हैं, बुरा समझते हैं, बुरा नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए कि अवश्य इसके पीछे भगवान की कोई योजना है जिससे हम आगे और बढ़ सके, आगे और कुछ करना है भगवान को। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। ठीक है, अभी हमारी बारी प्रश्न करने के लिए।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीनाथे भक्तिवेदान्ता स्वामी नामिने। Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Ascharyade Satharine Sadi, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरि 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 राम हरि राम 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 हरि हरि Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.